कृष्णस्य विश्व पुरुराज मंडलैर् अभ्याननः फुल्लदृशो व्रजार्भकाः पंखड़ियों तथा पत्तियों से घिरा हुआ कोई कमल पुष्प कोष हो उसी तरह बीच में कृष्ण बैठे थे और उन्हें घेर कर पंक्तियों में उनके मित्र बैठे थे। वे सभी अत्यंत सुंदर लग रहे थे। उनमें से हर बालक यह सोचकर कृष्ण की ओर देखने का प्रयास कर रहा था कि शायद कृष्ण भी उसकी ओर देखें। इस तरह उन सबों ने जंगल में भोजन का आनंद लिया। कृपा करके अनुवाद को दोहराइए। जिस ये सुंदर वर्णन कर रहे हैं कि किस तरह से कृष्ण भगवान अपने ग्वाल बाल मित्रों के सहित यमुना के तट पर वृंदावन के वन में बैठे हैं भोजन ग्रहण करने के लिए। कृष्णस्य विश्वक, विश्वक मतलब घेर कर बैठे थे सभी। घेर कर कैसे बैठे? मंडले, एक गोलाकार में। कितने मंडल ऐसे गोलाकार हुए? पुरुराजी, कई तरह के, एक गोल, उसके बाहर और एक गोल, उसके बाहर और एक गोल। तो कृष्ण को घेर कर सारे उनके जो मित्र थे गोल गोल बनाकर बैठे थे, एक गोल दूसरा गोल, और केंद्र में कृष्ण भगवान बैठे हैं और सभी ग्वाल बाल अभ्यानना, सभी कृष्ण की ओर देख रहे हैं आंखें फाड़ फाड़ के आनंद से, और देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? फुल्ल दृश्यो, जब कृष्ण की ओर देख रहे हैं तो उनके चेहरे प्रफुल्लित हुए हर्ष उल्लास से, बड़े खुश हैं, देख रहे हैं कृष्ण की ओर। व्रज अर्भकाः, व्रज के अर्भकाः, अर्भकाः मतलब बालक। सहोपविष्टा विपिने विरेजु, तो विपिन में जंगल में बैठे हैं उपविष्टा कृष्ण के साथ में, और ये दृश्य कैसे लग रहा था? यथा अम्भोरु कर्णिकाया छदा, जैसे कमल पुष्प का कोष होता है, बीज का हिस्सा होता है, कमल कोष को किस तरह से पंक्तियों और पत्ते घेर लेते हैं उसी तरह से कृष्ण बीच में बैठे थे और उनके ग्वाल बाल सारे इर्द गिर्द उनके गोलाकार बनाए हुए बैठे थे। ये दृश्य यहाँ सुंदर चित्र में है जो आपने शायद कई बार पहले देखा होगा, लेकिन इसी चित्र का वर्णन इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी ने किया है। जरा पकड़ना होगा, सभी लोग देख रहे हैं, दिखाई पड़ रहा है सब किस तरह से गोलाकार में बैठे हैं, और ऊपर कुछ दिखाई पड़ रहा है आपको आकाश में? ऊपर क्या है? गरुड़ जी नहीं है, कोई एक महाशय हैं जो देख रहे हैं, ब्रह्मा जी हैं। इनके बारे में बाद में आके जाके पढ़ेंगे, लेकिन ये चुपके से देख रहे हैं आकाश से अपने हंस वाहन के ऊपर सवार होकर, और उधर कृष्ण और उनके ग्वाल बाल मित्र बैठे हैं। तो ये सुंदर दृश्य आप हमेशा याद रखिए। इसको यहीं पर कुर्सी के ऊपर रख देते हैं ताकि जैसे जैसे हम बोल रहे हैं तो आप इस दृश्य को देखते रहिए। बाद में भी आकर, प्रवचन के बाद में भी आकर इस तस्वीर को अच्छी तरह से देखिए और इसका फोटो अपने हृदय में ले लीजिए, अपने आंखों से फोटो लीजिए, और फिर जो रोल है सिनेमा पिक्चर का रोल, वो आपका हृदय होना चाहिए। तो हृदय में ये पिक्चर बैठ जाना चाहिए। तो आचार्य बताते हैं कि कृष्ण इस समय पीतांबर पहने हुए थे, स्वर्ण रंग, और उनका तेज भी स्वर्ण रंग का लग रहा था, और उनका जो श्यामल रंग है बहुत आकर्षक लग रहा था, और जो अलग अलग गोप हैं ग्वाल बाल, उन्होंने भी रंग बिरंगे कपड़े पहने थे, सब इधर उधर बैठे हुए थे। जिस तरह से इंद्र जब अमरावती में इंद्रलोक में अपने दरबार में बैठते हैं देवताओं से घिरे हुए, जिस तरह से कमल का कोष 100 या 1000 सुंदर सुंदर पंक्तियों से पत्तों से घिरा हुआ रहता है, उसी तरह से श्री कृष्ण बीच में बैठे थे और उनके इर्द गिर्द सारे ग्वाल बाल उनको घेर कर बैठे हुए थे। पुरु राज मंडले, इसका मतलब है कि कई गोल थे हा? और जो सबसे नजदीक बैठे थे वो उनके निकट के दोस्त थे, क्योंकि ग्वाल बालों की संख्या कितनी थी, हजारों में थी। हजारों की संख्या में कृष्ण भगवान गायों को लेकर जाते थे, ग्वाल बालों को साथ में लेकर जाते थे, इसलिए हजारों की संख्या में ग्वाल बाल थे। और जो उनके निकट के सब थे, जैसे श्री दामा, सुबल, मधुमंगल इत्यादि, वो सब पास में बैठे थे और फिर अन्य भक्त पीछे 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 बैठे थे। और ऐसे लग रहा था कि सूरज की अलग अलग किरणें हैं, बीच में कृष्ण है सूरज के समान, और जो अलग अलग लाइन है सारे उनके ग्वाल बाल मित्रों के, वो सूरज के अलग अलग किरणें हैं। और इन्होंने अलग अलग कपड़े पहने थे अलग अलग रंग के, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे उस गोलाकार में बाहर जा रहे थे, उस पूरी राजमंडली में ऐसा लग रहा था कि एक इंद्रधनुष है। इंद्रधनुष को आप देखते ना, रंग बिरंगी कैसे होता है। तो कृष्ण भगवान ये कौन से कपड़े पहने थे, स्वर्ण रंग के, और उनके शरीर का रंग, कांति क्या थी उनकी, श्यामल मेघ रंग, और सबसे पहले लाल रंग के कपड़े थोड़े बहुत ग्वाल बालों ने पहने थे, फिर संतरे का रंग था, उसके बाद में पीला, उसके बाद में हरा, फिर नीला, फिर बैंगन का रंग, इस तरह से अलग अलग रंग ऐसे रंगों में बैठे थे ग्वाल बाल। और ऐसे लग रहा था कि कितना सुंदर इंद्रधनुष है, तो कल्पना कीजिए अपने मन में इतना सुंदर दृश्य हुआ होगा। और इस तरह से हालांकि कृष्ण भगवान से अलग अलग दूरी पर बैठे थे ग्वाल बाल, लेकिन सभी लोग सोच रहे थे कि कृष्ण मेरे पास बैठे हैं, कृष्ण मुझे ही देख रहे हैं। तो ये सुंदर दृश्य देखकर हमें हम क्या सीख सकते हैं, हम ये सीख सकते, कई चीजें सीख सकते हैं। पहली बात, जिस तरह से ग्वाल बालों ने कृष्ण को केंद्र में रखा और कृष्ण की ओर देख रहे थे, अब ध्यान ना, उसी तरह से हमने भी हमारे जीवन में कृष्ण को केंद्र में रखा और केवल कृष्ण की ओर ही देखते रह गए, कृष्ण से विमुख कभी नहीं हुए, तो हमारी दशा क्या होगी, जो ग्वाल बालों की हुई थी। क्या ग्वाल बालों की दशा हुई थी, फुल्ल दृशः प्रफुल्लित चेहरा, प्रसन्न चित्त से उनके चेहरे खुशी से चमक रहे थे, जैसे आप सबके चमक रहे हैं भक्ति भावना से। प्रभुपाद भी यही कहा करते थे कि जब आप कृष्ण को केंद्र में रखोगे तो आपका चेहरा प्रफुल्लित हो जाएगा। हालांकि थोड़े बहुत नींद से भरे हुए आंखें हैं, चेहरे हैं, फिर भी आप सबके इतना प्रफुल्लित लग रहे हैं, क्योंकि आप भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा, जब मैं पश्चिम देश में गया था तो वहां पर ये सारे लोग हिप्पी थे, नाना प्रकार के बुरे कार्य करते थे, लेकिन कृष्ण की सेवा इन्होंने आरंभ की तो हिप्पी से हैप्पी बन गए, खुश बन गए। तो इस तरह से बाहर के संसार में लोग बड़े उदास रहते हैं, मासूम चेहरा लेकर घूमते हैं, है ना, कहीं जाकर देखिए कैसा चेहरा लेकर साथ में घूमते हैं, लेकिन भक्त होते हैं कैसे, हमेशा आराम से रहते हैं। वो कहावत, बंबई की कहावत हम आपको सुनाते रहते हैं ना, माया दास सदा उदास, कृष्ण दास बिंदास, है ना। तो कृष्ण दास जो होता है हमेशा खुश रहता है। तो इस लीला से, इस बैठने के, इस पूर्व राज मंडली से हम ये सीख सकते हैं कि हमने भी हमारे जीवन में कृष्ण को केंद्र में रखा तो हम खुश रहेंगे। इसी तरह से हमारे भक्त के समाज, भक्तों के समाज में भी हमें कृष्ण को केंद्र में ही रखना चाहिए हमेशा, और कृष्ण की ओर सभी को देखना चाहिए, अपना स्वार्थ किसी को नहीं देखना चाहिए, अपनी सुविधा असुविधा को नहीं देखना चाहिए, केवल कृष्ण की सेवा कैसे उत्कृष्ट ढंग से हो जाए वो हमें देखना चाहिए। अगर हम सभी ऐसा सोचने लगे, ऐसा करने लगे, तो हम सब इन ग्वाल बालों की तरह खुश रहेंगे, सभी लोग प्रेम से आपस में रहने लगेंगे, सब लोग प्रेम से कृष्ण का गुणगान करेंगे, कृष्ण के संग में रहेंगे। ये है सबक। दूसरी बात हम इससे क्या सीख सकते हैं, कि जब कृष्ण भगवान इस तरह बैठे थे और सभी ग्वाल बाल उनकी ओर देख रहे थे, तो हर एक ग्वाल बाल को क्या लग रहा था, क्या लग रहा था कि कृष्ण मेरे पास ही देख रहे हैं। जब भी कृष्ण ऐसे अपना सर घुमाते या उनकी दृष्टि उस दिशा में जाती, हजारों की संख्या में ग्वाल बाल थे, लेकिन हरेक ग्वाल बाल को यह लग रहा था कि कृष्ण मेरे ही ओर देख रहे हैं, और सारे ग्वाल बालों का चेहरा एकदम चमक जाता कि कृष्ण मुझे देख रहे हैं। जिस तरह से संसार में लोग बहुत खुश हो जाते हैं जब कोई फिल्म का अभिनेता उनकी ओर देखता है, अरे उसने हमारी ओर देखा। जैसे एक बार कई साल पहले बंबई में हमारे मंदिर में हमने एक बहुत प्रसिद्ध अभिनेत्री को बुलाया था, और वो आई थी, वो भी कृष्ण के भक्त हैं, लेकिन आखिर में है फिल्म की अभिनेत्री। तो आई तो उस समय जब वो जन्माष्टमी के दिन आई, उन्होंने हमारे जन्माष्टमी उत्सव में एक नृत्य भी प्रस्तुत किया कृष्ण लीला का, बहुत सुंदर था, भक्ति भाव का था। उन्होंने मुफ्त में किया, कुछ लिया नहीं, उन्होंने सेवा के तौर से किया, तो भक्ति भावना थी उनके अंदर। लेकिन जब वो मंदिर में आई, जब उन्होंने प्रवेश किया, तो एंट्रेंस ऐसा हुआ, उनका प्रवेश ऐसा हुआ कि सभी लोग कृष्ण को भूल गए और उनकी ओर देखने लगे, हाहाकार मच गया प्राय। सभी लोग थे, कोई नए भक्त, कोई पुराने भक्त, कोई नए लोग ऐसे यूं ही दर्शन करने आए थे, देखो 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 आए हैं। और बाद में हमने सुना दो छोटी माताजी बोल रही आपस में, बोल रही, अरे उसने मेरी ओर देखा, मेरी ओर देखा उसने। तो देखो, साधारण संसार के कोई अभिनेता अभिनेत्री आते हैं और हमारी ओर देखते हैं, तो हमें लगता है अरे वाह, आज का दिन हमारा बन गया, देखो हमारा जीवन सफल हो गया, आज उसने हमारी ओर देखा और हंसी वो हमें देखकर। तो देखिए, ये सब विकृत प्रतिबिंब है। ग्वाल बाल जब देख रहे हैं कि कृष्ण मेरी ओर देख रहे हैं, कितने खुश हो गए। उसी तरह से जब कृष्ण भगवान रासलीला कर रहे थे, तो हर एक गोपी को लगा कि कृष्ण मेरे साथ में ही है, कृष्ण मेरे ओर ही देख रहे हैं। उसी तरह से चैतन्य महाप्रभु जो कि वही कृष्ण है, जब वो रथ यात्रा के सामने संकीर्तन किया करते थे, तो कई संकीर्तन के पार्टी बना देते थे, वो ग्रुप दल बनाते थे, कई बार सात अलग अलग दल हुआ करते थे, हर एक दल में दो दो गायक, दो दो या चार चार मृदंग बजाने वाले, आठ लोग करताल बजाने वाले, ऐसे सात दल हुआ करते थे, चार आगे, एक इस तरफ, एक उस तरफ, बाएं तरफ, दाहिने तरफ, और फिर जो बचे हैं एक या दो पीछे, रथ के पीछे। और चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते करते एक दल से दूसरे दल, दूसरे से तीसरे में घूमते रहते थे, और हर एक दल को ये लगता था कि चैतन्य महाप्रभु हमारे दल में ही है। उनको ये प्रतीत लगता नहीं था कि चैतन्य महाप्रभु छोड़कर दूसरे दल में गए हैं। तो ये है भगवान की खूबी। देखिए, भगवान ही एकमात्र व्यक्ति हैं जो हर एक जीव के साथ में संबंध स्थापित कर सकते हैं, और सारे संबंधों में जिनके साथ उन्होंने संबंध स्थापित किया है, उनको संतुष्ट करने का सामर्थ्य केवल कृष्ण में है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ध्यान से सुनिएगा। हमारे जीवन में भी हम देखते हैं कि हमारे कितने सारे संबंध होते हैं, लेकिन हमारे सगे संबंधी जो भी है, हमारे संपर्क में जो भी आते हैं, क्या अब हम सभी को संतुष्ट कर सकते हैं? क्या हमारे अंदर वो सामर्थ्य है, वो शक्ति क्षमता है? नहीं। अगर हम घर में ज्यादा समय नहीं दे पाते, मंदिर में ज्यादा समय दे रहे हैं, तो घर के लोग बोलते हैं, क्या है घर में आते नहीं हो, घर से चले जाते हो, सारे दिन मंदिर में रहते हो, मंदिर के लिए ज्यादा समय लेते हो। और घर में ज्यादा समय लेने लगे तो मंदिर के भक्त बोलते हैं, क्या प्रभु माया में आ गए, घर में ही रहते हो, मंदिर में आते नहीं हो। और घर में और मंदिर में आधा आधा टाइम बिताने लगे तो वहां दफ्तर में कस्टमर लोग, ग्राहक लोग चिल्लाने लगते हैं, और वहां पर जो कर्मचारी हैं वो कुछ न कुछ गड़बड़ करते हैं, वो कहने लगते हैं, क्या माँ साहब सेठ तुम रहते नहीं हो, दफ्तर में नहीं रहते हो, फैक्ट्री में नहीं रहते हो, दुकान में नहीं रहते हो। और अगर तीनों को संतुष्ट किया जाए तो समाज फिर बोलने लगता है, क्या साहब हमारे घर में आजकल आते नहीं हो आप, ईद का चांद बन गए हो, आते नहीं हो, किस किस को खुश करे आदमी बेचारा इस संसार में, इसको खुश करने जाए, इसके साथ अच्छा संबंध स्थापित करने जाए वो बेचारे नाराज हो जाते हैं, इनको खुश करने जाए तो कोई और नाराज हो जाता है। तो हमारे अंदर वो क्षमता नहीं है, वो पात्रता नहीं है कि सभी को हम खुश रखें। सभी से व्यक्तिगत, एक निजी व्यक्तिगत संबंध स्थापित करना और उस संबंध के अनुसार प्रेम का आदान प्रदान सभी के साथ में करना, ये संभव नहीं है। शुद्ध भक्त कभी कभी ऐसे लक्षण प्रकट करते हैं, सभी को संतुष्ट करते हैं। हर एक भक्त सोचते हैं कि ये मेरे से इतना प्रेम करते हैं, मेरे ऊपर कितनी कृपा है, मेरा इनका निजी संबंध इनके साथ में है, जैसे प्रभुपाद के साथ में हुआ करता था। उनके सारे शिष्य सोचते थे कि मेरा इनके साथ निजी संबंध है, प्रभुपाद मेरे हैं। हालांकि कई शिष्य उनके होते थे जो प्रभुपाद को शायद साल में एक बार देखते, कई लोग थे जो प्रभुपाद के सेक्रेटरी थे, उनके दास थे, सेवक थे, तो प्रभुपाद के साथ में रहा करते थे, लेकिन कई लोग बहुत कम देखा करते थे। लेकिन शुद्ध भक्त का प्रभाव ऐसे होता है कि ज्यादा संबंध न होने से भी, संपर्क न होने से भी, उनको एक निजीपन ऐसे लगता था, निकटता ऐसे लगती थी कि प्रभुपाद मेरे हैं, क्योंकि कृष्ण की शक्ति को प्रकट कर रहे हैं उनके माध्यम से। इसी तरह से कृष्ण हर एक ग्वाल बाल के साथ में लीला कर रहे हैं, इसी तरह से कृष्ण भगवान का संबंध हर एक जीव के साथ है, चाहे वो भौतिक ब्रह्मांड में हो या आध्यात्मिक जगत में हो। और कृष्ण भगवान हर एक जीव के साथ में पूरी पूरी तरह से संबंध स्थापित करते हैं और हर एक जीव को पूरी तरह से संतुष्ट करने की शक्ति उनके अंदर है। कृष्ण लीला में, भगवान के धाम में कोई ऐसा जीव नहीं है जिसको लगता है कि कृष्ण भगवान इतने सारे हजारों करोड़ों भक्तों के साथ में लीला कर रहे हैं तो शायद मेरे ओर ध्यान देने के लिए उनको समय नहीं। नहीं, हर एक जीव को लगता है कि मैं तो संतुष्ट हूँ, कृष्ण मुझे उचित समय दे रहे हैं, मेरे लिए ही कृष्ण सब कुछ कर रहे हैं, किसी को कोई का कोई अभाव नहीं, कोई कमी को महसूस नहीं करते हैं कोई लोग। तो इस तरह से ग्वाल बाल यहाँ जो थे सभी को लग रहा था कि हाँ, कृष्ण हमारे प्रिय हैं, कृष्ण मेरे हैं, इस तरह से सभी लोग संतुष्ट थे। तीसरी बात हम ये सीख सकते हैं, जैसे उपनिषदों में कहा है, ऋषि मुनियों ने कहा है कि कृष्ण भगवान की आंखें, उनके मुख, उनके कान, उनके नसिके, उनके हाथ, उनके पैर सब जगह हैं। खास करके जो निराकारवाद को पसंद करते हैं तो वो ऐसे उपनिषदों का अध्ययन करते हैं जिसमें भगवान के विराट रूप का या भगवान के निराकार रूप का दर्शन होता है। तो जो गुण निम्न श्रेणी के रूप में होते हैं वो श्रेष्ठ श्रेणी के रूप में तो होने ही है। जब विराट रूप में, परमात्मा रूप में ऐसे गुण हैं तो जो विराट रूप के और परमात्मा के उगम स्थान है श्री कृष्ण, उनमें तो गुण होने चाहिए। इसलिए कैसे हो सकता है कि कृष्ण के दो आंखें हैं, एक जगह देख रहे हैं लेकिन सभी लोग सोच रहे हैं कि मेरी ओर देख रहे हैं। इसका मतलब है कि ऐसे है कि उनकी आंखें सब जगह हैं, उनके एक मुख सब जगह हैं। देखिए, आचार्य ने ऐसे सुंदर सुंदर टीकाएं की हैं, एक एक लीला का विश्लेषण करके उसका रस के बढ़ा के बढ़ाते बढ़ाते उन्होंने ये भागवत के माध्यम से और अन्य ग्रंथों के माध्यम से हमें चखने के लिए दिया है, तो हमें इनका स्वाद लेना चाहिए। तो इस तरह से सारे ग्वाल बाल बैठे हैं घेर कर कृष्ण भगवान को, और उन्होंने अपने अपने टिफिन बॉक्स, प्रसाद की थैली अपने अपने साथ लगाए थे। और जिस तरह से सुदामा वो पौवा को क्या कैसे ले गए थे, थैली में बांध लिया, कपड़े में, कपड़े को कहाँ लटकाया, लकड़ी पे बांध कर लकड़ी कंधे पर रख लिया। जैसे अभी भी आप गांव में अभी भी देखेंगे कि लकड़ी के ऊपर अपना सामान टंगा के जाते हैं और लकड़ी कंधे पर रखते हैं, उसी तरह से ग्वाल बाल भी उन्होंने अपने घर में, माँ ने सब जो तैयार किए थे भोजन, स्वादिष्ट व्यंजन, वो कपड़े में या कोई थैली में बांध दिए थे, और वो थैली वो कपड़े से लाठी में, और वो लाठी को लेकर सब ग्वाल बाल चल रहे हैं। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि अरे गोपगण, अपने अपने टिफिन बॉक्स, अपने अपने थैली इत्यादि अपने लाठी से नीचे रख दो और हम सब यहाँ पर बैठ जाते हैं। कवि कर्णपुर बताते हैं कि इनके टिफिन बॉक्स भी एक स्वर्ण ऐसा तेज उत्पन्न कर रहे थे, सब जगह उनका टिफिन का भी तेज चल रहा था उसमें। क्योंकि ये सब कृष्ण के सामग्री जो है ये भी चिन्मय होते हैं, साधारण नहीं होते। इसलिए कृष्ण के संबंध में जो भी वस्तुएं हैं उनका बहुत ध्यान से हमें उनको संभालना चाहिए। जैसे करताल होते हैं, मृदंग होते हैं, ग्रंथ होते हैं, इधर उधर नहीं रखना चाहिए। जिस जगह में हम बैठते हैं वहां करताल नहीं रखना चाहिए, टेबल पर रखें या कहीं और अच्छे जगह में रखने चाहिए। भगवान की जब हम सेवा करते हैं अर्चा विग्रह की, तो भगवान के कपड़े, उनके गहने, उनके बर्तन, उनके थाली, जो भी कुछ है वो बड़े अच्छे ढंग से स्वच्छ जगह में रखना चाहिए। उन चीजों को स्वच्छ रखना चाहिए, वातावरण को स्वच्छ रखना चाहिए, क्योंकि कृष्ण से संबंधित वस्तुएं हैं। इस तरह से हम इनको पवित्र समझकर इनका इस्तेमाल करना चाहिए। तो आगे चल के सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, जब ग्वाल बाल मित्रों ने अपने अपने कंधे से लाठी उतारी, अपने अपने थैली उतारे और फिर सब नीचे रख दिया और सब बैठ गए, उसके बाद क्या हुआ सुनिए क्या हुआ। केचित पुष्पय दलय केचित पल्लवै रंकुरै फलैः शिग्भिस्त्वग्भिर्दृशद्भिश्च बहुजुः कृतभाजनाः। किस तरह से उन्होंने भोजन ग्रहण किया, किस तरह से उन्होंने क्या क्या थाली बनाए अपने अपने, यहां वर्णन सुखदेव गोस्वामी करते हैं। हम जब प्रसाद ग्रहण करते हैं तो हमें अच्छी सी थाली चाहिए, जो अच्छा साफ हो, जो सर्फ से धुला हुआ हो और जो बिल्कुल चमक रहा हो, स्टेनलेस स्टील का हो, उसमें अलग अलग जगह में सब कुछ ठीक ठाक हो, दाल एक जगह, सब्जी एक जगह, चावल एक जगह, सब कुछ व्यवस्थित टिप टॉप हो। लेकिन ग्वाल बाल कैसे भोजन लेने के लिए बैठे, कई लोगों ने केचित थोड़े लोगों ने पुष्प की थाली बनाई, पुष्पों को रख लिया जमीन पे और पुष्पों को थाली समझकर उसके ऊपर सारा भोजन रख दिया। दलही केचित थोड़े लोगों ने क्या किया, पत्तों के, जो फूल के पत्ते होते हैं, पत्तों के थाली बना ली, जमीन पे रख दिए पत्ते और उनमें ये सारा भोजन रख दिया। केचित पल्लवैर, किसी ने पल्लवों की थाली बनाई जमीन के ऊपर। केचित अंकुर, कोई लोगों ने अंकुरों की थाली बनाई। केचित शिग्भिः, कोई लोगों ने अपने थाली में से ही खाना शुरू कर दिया। स्वग्भीर, स्वग्भीर मतलब वलकल, वलकल जानते हैं ना, वृक्ष का छाल जो होता है, जो साधु लोग पहनते हैं, जो वैरागी लोग पहनते हैं, तो उसको वलकल कहते हैं। तो कोई लोगों ने पेड़ से वो उखाड़ दिया, वो फाड़ दिया, फिर उसके ऊपर अपनी थाली बना ली। दृशत भीर, पत्थर के ऊपर ही, किसी देखा कि ये पत्थर है, थोड़ा बड़ जगह है यहाँ पर, पत्थर को अपनी थाली बनाकर उसमें से खाने लगे। बुभुझु कृत भाजना, इस तरह से अपने प्रसाद का आनंद लेने लगे। तो देखिए, कई लोगों ने अपने चद्दर में खाना शुरू किया, कई लोगों ने अपने हाथों में खाना शुरू कर दिया। सुखदेव गोस्वामी के बारे में बताया जाता है, वो खुद कहते हैं श्रीमद् भागवत में, कि जब हमारे पास ये दो हाथ हैं तो हमें प्याला ग्लास क्यों चाहिए। पानी पीना है, कुछ भी पीना है, तो यूं कर लो और किसी बर्तन उसमें डाल लो और पी लो। भोजन खाना है, अपने हाथ में ले लो, खा लो। बड़े बड़े बिस्तर क्यों चाहिए, हाथ है ना, तकिया है, इसको ऐसे रख लो, तकिया बन गया। और बिस्तर क्यों, जमीन है ना, जमीन की कमी है संसार में, जमीन में लेट जाओ। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, कपड़े क्यों चाहिए इतने शानदार, क्या रास्ते में पड़े हुए कोई कपड़े नहीं मिलते, पहन लो। ये है सुखदेव गोस्वामी। तो इसी तरह से ये ग्वाल बाल सोच रहे, कौन घर से थाली ले आएगा। उस जमाने में तो ना तो कोई पेपर प्लेट था, ना तो कोई प्लास्टिक था उस समय, है? तो वो लोग सोच रहे थे प्लेट की कमी नहीं है वन में, इतने थैली मिल जाएंगे, पुष्पों की थैली, अंकुर की थैली, पल्लवों की थैली, पत्तों की थैली, और नहीं तो फिर पत्थर पे रख के हम खा देंगे। इस तरह से ये सब यहाँ बैठे हुए हैं और खा रहे हैं। कई बच्चों ने बहुत ही कलात्मक ढंग से अपने प्रसाद को इधर उधर आकर्षित रूप से सजा के रखे थे अपने अपने पत्तों में। कोई किसी ने अपने चावल के पहाड़ बनाया, तो किसी ने अपने सब्जी का कुछ और आकार गोलाकार करके कुछ बनाया। सब ग्वाल बाल कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कि कृष्ण को दिखाएंगे कैसे सुंदर रूप से मेरा प्रसाद जो है थैली पर मैंने यहाँ आकर्षित रूप से रखा हुआ है। ये सब ग्वाल बालों की लीला चल रही है। देखिए आचार्य लोग सुखदेव गोस्वामी इत्यादि हमारे आंखों के सामने ये लीला प्रस्तुत कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग तो थे नहीं उस समय। अब कम से कम हम लोग तो नहीं थे, आप में से कोई थे उस समय तो पता नहीं, लेकिन पिछले जन्म में कौन ग्वाल बाल थे आप कह नहीं सकते। तो इसलिए हमें बता रहे, हमारे आंखों के सामने सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं और फिर वर्णन करते हैं। उन्होंने खाना आरंभ किया, कैसे खाना आरंभ किया सुनिएगा। सर्वे मिथो दर्शयन्तः स्वस्व भोज्य रुचिं पृथक हसन्तो हासयन्तश्च भ्यवजहुरु सहेश्वराः। सर्वे सब लोग मिथो एक दूसरे को दर्शयन्तः दिखाने लगे, क्या दिखाने लगे, स्वस्व भोज्य रुचिं पृथक। स्वस्व भोज्य अपने अपने घर से अपने अपने माताओं ने तैयार किए हुए भोजन अपने अपने टिफिन बॉक्स खोलकर सब लोग दिखाने लगे एक दूसरे को और कृष्ण को। अरे कृष्ण देखो मैंने खीर लाया, देखो मेरे खीर, कृष्ण देखते हाँ हाँ। अरे श्रीदामा देखो मेरे पास अचार है, आम का अचार है देखो। और कोई बच्चा कहता देखो मेरे पास ये लौकी की सब्जी है देखो देखो। इस तरह से हरे ग्वाल बाल अपने अपने थैली में जो भी है दूसरों को दिखा रहा था, देखो मेरे पास ये है मेरे पास ये है। और एक दूसरे की थाली सब लोग देखते खाने के पहले, अरे वाह ये तो बहुत अच्छा है। तो इस तरह से फिर धीरे धीरे से वो खाने लगते। एक मित्र कृष्ण को देखते कि देखो देखो हे कृष्ण ये चखो ये मेरा भोजन कितना स्वादिष्ट है। तो कृष्ण उस भोजन को चखते, हाँ ये तो बहुत स्वादिष्ट है। फिर उस तरह से श्रीदामा और बलराम इत्यादि वो भी अपना भोजन दूसरे को देते, दूसरे का भोजन और लेते। एक बार एक ग्वाल बाल ने थोड़ा सा भोजन दिया और कृष्ण ने चख के कहा अरे मित्र मैंने ऐसा भोजन जीवन भर में चखा नहीं है, इतना स्वादिष्ट है ये। ग्वाल बाल कहने लगा हाँ सही बात है सही बात है, आखिर मेरे माँ ने बनाया है ना, सही है। तो दूसरा बार सुबल थे, सुबल ने भी कृष्ण को कृष्ण से कहा अरे कृष्ण ये देखो मेरे पास क्या है ये खा लो। तो कृष्ण ने खा लिया, खाकर हंसने लगे जोर से। और दूसरे बच्चों ने भी ग्वाल बालों ने खाया और फिर हंसी मजाक करने लगे अरे ये क्या बनाया, लगता है कि तुम्हारी दादी माँ को बिल्कुल पकाना नहीं आता है, और ऐसे प्रसाद को खाकर हम तो बड़ी दुखी हो गए हैं। और फिर श्रीदामा थोड़े निराश हो जाते। और फिर और एक भक्त थे श्रीदामा, श्रीदामा ने फिर अपना भोजन सबको दिया, सभी ने चखा और कहा अरे हाँ हाँ अरे ये भी बहुत बढ़िया, ये भी भोजन जो है ये बहुत बढ़िया है। फिर वरुथाप नाम के एक ग्वाल बाल थे, वरुथाप ने भी अपने माँ ने बनाया हुआ भोजन सबको दिया। ग्वाल बाल चखने लगे, हंसने लगे अरे ये भी तो सुबल के भोजन की तरह है, लगता है कि वरुथाप की दादी माँ को भी पकाना नहीं आता बिल्कुल। तो इस तरह से हंसी मजाक उनमें चलता था, खाते खाते एक दूसरे को खिलाते, हंसते हंसते एक दूसरे को हंसाते, ये अपना पिकनिक मना रहे थे। कल्पना कीजिए ये दृश्य, सब बैठे हैं, सोच लीजिए ब्रह्मा जी की क्या हालत हुई होगी, ये देख रहे क्या चल रहा है, ये भगवान है क्या है, ये एक दूसरे का भोजन चोरी कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या चल रहा है ये सब। तो इस तरह से कृष्ण अपने ग्वाल बाल मित्रों के प्रति एक सुंदर सुंदर मीठे मीठे शब्द बोल रहे थे, चुटकुले सुना रहे थे, और ऐसे लग रहा था कि कृष्ण के मुखारविंद से वाणी अमृत की तरह बह रही है। और इस तरह से कृष्ण भगवान ने अपने मित्रों का मनोरंजन किया और कई कई बार चुटकुले सुनाते थे, बहुत अच्छे अच्छे बुद्धिमान ऐसे बुद्धि की बातें करते थे। और जो ग्वाल बालों के चेहरे में वो बिल्कुल हसमुख जो चेहरा था उनका, उससे ये प्रतीत हो रहा था कि उनके हृदय में कितना आनंद है। तो कृष्ण ने अपने ग्वाल बाल मित्रों को कितना आनंद दिया। तो कृष्ण का स्नेह, श्री राधा गोकुलानंद भगवान की, तो कृष्ण का स्नेह, कृष्ण के स्नेह ने अपने ग्वाल बाल मित्रों को का हृदय जीत लिया। और जो भी इस दृश्य को देख रहा था उसके सांस ही नहीं ले पाता था, बिल्कुल इतना अद्भुत एक दृश्य था। तो इस तरह से हंसते हंसाते खाते खिलाते सारे ग्वाल बाल जो हैं वहाँ इस यमुना के तट पर इस वन में बैठे हुए उस बहुत ही स्वच्छ रेती में बैठे हुए सब भोजन का आनंद ले रहे हैं। और ऐसे ही भोजन के आनंद लेते लेते आज की कथा हम समाप्त करते हैं, क्योंकि भोजन की याद आप सबको भी आई होगी, इसलिए आज की कथा यहाँ समाप्त करते हैं। कोई टीका टिप्पणी प्रश्न इत्यादि।
सुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य। हरे कृष्णा। तो ब्रह्म विमोहन लीला की कथा पिछले दो दिनों से चल रही है। कल कथा यहां समाप्त हुई कि भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल बाल मित्रों के संग यमुना जी के तट पर आए हैं और एक अति रम्य स्थान में बैठकर सभी प्रसाद का सेवन कर रहे हैं, एक दूसरे को खिला रहे हैं, खुद खा रहे हैं, हंस रहे हैं, दूसरों को हंसा रहे हैं, चुटकुले सुना रहे हैं, उपहास कर रहे हैं। और ऐसे भगवान श्री कृष्ण के संग में सारे ग्वाल बाल दिव्य आनंद का भोग कर रहे हैं। तो इस तरह से ये भव्य बहुत ही सुंदर दृश्य सारे देवी देवतागण देख रहे हैं। और यहां यमुना जी के तट पर इस सुंदर दृश्य का वर्णन सुखदेव गोस्वामी आगे भी करते हैं, और विशेषतः इस अगले श्लोक में वो श्री कृष्ण का वर्णन करेंगे और किस तरह से उनको देखकर सारे देवी देवता भी विस्मित हो गए, भ्रमित हो गए। सुंदर श्लोक है। बिभ्रद वेणुम जठर पटयः श्रृंगवेत्रे च कक्षे वामे पाणौ मसृणः कवलम् तत्फलान्यङ्गुलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपरिसुहृदो हासयन्नर्मभिः स्वैः स्वर्गे लोके मिशति बुभुजे यज्ञभुग्बालकेलिः। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कृष्ण कैसे दिख रहे थे उस समय, वो सारे ग्वाल बालों के बीच में बैठे थे जिस तरह से एक कमल पुष्प का कोष होता है और ग्वाल बाल पंक्तियों की तरह घेर कर कृष्ण को बैठे थे, ये कल हम चर्चा कर चुके हैं। तो कृष्ण के साथ में हमेशा उनकी सामग्री होती है जो उनकी लीला में साथ देते हैं। कृष्ण के साथ में क्या रहता है हमेशा, कौन सी सामग्री उनके साथ में रहती है? कृष्ण भगवान के साथ में वृंदावन में बांसुरी, मोर पंख रहता है, श्रृंग, श्रृंग मतलब जो भैंस के सींग से बनाया हुआ बाजा होता है जो कि सारे ग्वाल बाल बजाते थे, और सारे ग्वाल बाल इनके पास कम से कम ये तीन चीजें हुआ करती थी। एक तो बांसुरी, सभी के पास बांसुरी हुआ करती थी, लेकिन कृष्ण जैसा बांसुरी कोई नहीं बजा सकता था, बलराम जी भी नहीं बजा सकते। और दूसरा ये श्रृंग, और तीसरा गाय चराने के लिए लाठी। वैसे और कई छोटी छोटी चीजें होती थी, जैसे एक रस्सी, रस्सी हमेशा वो कंधे पे टांग के रखते थे यूं, या तो फिर वो रस्सी जो कि रेशम की बनी हुई होती थी उसको पगड़ी के रूप में बांधकर रख देते थे, वो एक आभूषण भी बन जाता था, एक किरीट भी बन जाता था। तो ये चीजें हैं ग्वाल बालों के सब चीजें। जैसे आजकल लोगों की सामग्री क्या होते हैं, ब्रीफ केस ले जाते हैं, मोबाइल फोन ले जाते हैं, साथ में अखबार ले जाते हैं, तो ये आजकल आधुनिक मनुष्य की सामग्री होती है। लेकिन कृष्ण भगवान ग्वाल बाल के संग में जाते थे तो उनके पास ये सब सामग्रियां रहती थी, क्योंकि इनके लीला में ये सब चीजें सहयोग देती थी। आजकल आधुनिक मनुष्य के लीला में सहयोग देने वाले सामग्री ये सब है, हलो हलो करते रहते हैं सारा दिन भर। तो कृष्ण भगवान वेणु धारण किए हुए थे और जब सब ग्वाल बालों के बीच में बैठे थे तो वेणु कहाँ रखी हुई थी, जठर पटयोह, अपने उधर अपने कमर पर उन्होंने एक पट्टी बांधी हुई थी, धोती के ऊपर पटयोह। ये कृष्ण भगवान हमेशा ऐसे पहनते हैं, जब हम श्री कृष्ण के अर्चा विग्रह को श्रृंगार करते हैं तो भी उनके धोती के ऊपर एक कपड़ा बांध देते हैं, एक पट्टा जैसा, और वो बहुत ही सख्ती से बंधा हुआ होता है। तो कृष्ण भगवान ने अपने दाहिनी ओर अपने कमर के बीच में और उस पट्टे के बीच में लगा दिया ताकि वो फिट बैठ जाए उधर इस तरफ, और बाएं ओर क्या रखा, सिंह वेत्रेच कक्षे वामे, कक्षे मतलब उनके कमर पर, वामे मतलब बाई ओर, सिंह और वेत्र, सिंह मतलब वो भैंस का सिंह का बनाया हुआ बाजा, और वेत्र मतलब लाठी जिससे वो गायों को चराने के लिए इस्तेमाल करते थे, कभी कभी वो अपने कंधे पे रखते थे। कल वर्णन कर रहे थे कि इस लाठी के ऊपर उनके उनके जो माताएं होती थी वो टिफिन देती थी, उनका भोजन देती थी, और कपड़े में या किसी थैली में बांध कर वो फिर लाठी को बांध देते थे, और जैसे सुदामा चले द्वारका उस लाठी को लेकर अपने कंधे पे ग्वाल बाल भी ऐसे ही जाया करते थे। और इस लाठी का प्रयोग और किस लिए करते थे आप जानते हैं, लाठी से खेल करते थे, ऊपर यूं फेंकते थे, ऊपर लाठी घूम घूम कर आती थी, फिर से ठीक से पकड़ लेते थे, ये ग्वाल बालों का खेल है। लाठी चलाने में फिराने में बहुत निपुण थे ग्वाल बालगण, किसी भी तरह से घुमा सकते थे, फिरा सकते थे, यूं फेंकता था कोई लड़का तो घूम के इस तरफ से फिर से आके पकड़ लेता, तो कोई पीछे से यूं घुमा लेता तो उधर से घूम घूम के फिर आके वो पकड़ लेते। तो जंगल में ऐसे सब आते जाते ये लोग ऐसे लीला करते थे। चैतन्य महाप्रभु भी कब अलग अलग भाव में आ जाते थे, कभी बलराम जी की लीला करते थे, कभी ग्वाल बालों की भाव में आकर ग्वाल बालों जैसा व्यवहार करते थे, कभी प्रभु रामचंद्र जी का भाव आ जाता था तो फिर वो लंका पार कर समुद्र पार करके लंका जाने के लिए तैयार करते, ऐसी लीला करते। तो जैसे जैसे चैतन्य महाप्रभु भाव स्वीकार करते उस प्रकार की लीला भी वो करते। तो जब भी चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षद ग्वाल बालों की के भाव में आ जाते थे तो ये लाठी की लीला करते थे हमेशा। और चैतन्य महाप्रभु कभी कभी कहते लोगों से, देखो मैं ग्वाल बाल हूं, और फिर लाठी ऊपर उठाते और फिर उसको पकड़ देते। सभी लोग आश्चर्यचकित रह जाते कि कितने निपुणता से महाप्रभु लाठी को ऊपर उठा रहे हैं और फिर ठीक से पकड़ रहे हैं उसको। लाठी ऊपर फेंक कर उसको गोल गोल फिरा कर उसे पकड़ना आसान बात नहीं है। आपने प्रयत्न किया है कभी, कभी ये और उस ओर लग जाता है, ये और लग जाता है, कभी गिर जाता है, लेकिन ग्वाल बाल बड़े निपुण होते थे। तो ये छोटी काठी बड़ी लाठी अलग अलग साइज होते थे लाठी के, तो अपने बाएं ओर जठर यानी कमर और उस पट्टा के पट्टे के बीच में उन्होंने वो बाजा और वो लाठी लगाई हुई थी। तो इस ओर क्या था, इस ओर बांसुरी और इस ओर लकड़ी यानी वो लाठी और श्रृंग दोनों लगे हुए थे, क्योंकि अभी हाथ व्यस्त थे, नहीं तो बांसुरी हाथ में रहती है या काठी जो लाठी है वो कंधे पे रहती है, लेकिन अभी खाने बैठे थे, प्रसाद लेने बैठे थे, तो यूं ऐसे डाल दिया, यहां डाल दिया। और हाथ में क्या था उनके, पाणौ मत्स्यन कवलम तत्फलानि अंगुलीषु, बहुत सुंदर, अपने हाथों में मत्स्यन कवलम मतलब चावल और दही, दही चावल, ये था बाएं हाथ में। और आचार्य भी बताते हैं कि थोड़ा उसमें मक्खन भी था और थोड़ा कुछ और भी इधर उधर की चीजें थी, लेकिन खास करके जो दही चावल और मक्खन, और दाहिने हाथ में अचार था, ये कवि कर्णपुर बताते हैं। और बाएं हाथ में थोड़ा बहुत फल की उसके ऊपर था, फ्रूट सैलड बना दिया था भगवान ने। और ये फ्रूट जो फल के टुकड़े होते थे उनके छोटे छोटे पंक्ति जैसे उंगलियों के बीच में से दिखाई पड़ते थे। और इस तरह से कृष्ण भगवान बैठे थे, बाएं हाथ में दही चावल और फल और दाहिने हाथ में अचार लेके बैठे हैं, खा रहे हैं, कभी इस हाथ से तो कभी उस हाथ से। जब दही चावल खा लिया तो कभी अचार चटपटा स्वाद लेने की इच्छा हुई तो अचार खा लिया थोड़ा बहुत। वहां कोई फोर्क नाइफ चम्मच वगैरह नहीं हुआ करते थे, ग्वाल बाल थे, हाथ से खा लिया करते थे। और भगवान श्री कृष्ण तो बाल लीला कर रहे हैं ना, तो उनके लिए बायां दाहिना कोई नहीं, कोई नियम नहीं खाने के लिए। वैसे भी भगवान के लिए क्या नियम हो सकते हैं, नियम तो हमारे लिए होते हैं, मर्यादा इत्यादि ये सब भगवान को सीमित नहीं कर सकते। अभी हमारे लिए ये बहुत एक महत्वपूर्ण मर्यादा है कि हमें बाएं हाथ से नहीं खाना चाहिए, ये बाएं हाथ का प्रयोग बिल्कुल प्रसाद में नहीं करना चाहिए। कई बार देखा जाता है कि भक्त लोग चपाती या रोटी तोड़ते हैं तो दोनों हाथों से तोड़ते हैं, ऐसे भी नहीं करना चाहिए। बाएं हाथ से प्रसाद को छूना नहीं चाहिए। प्रभुपाद जी इतनी शक्ति से इसका पालन करते थे कि कभी कभी केले को खाते समय भी वो अपने दांतों से छिलका, एक हाथ से केला पकड़ते थे, दांतों से छिलका निकाल देते थे। तो ठीक है, बायां छिलका निकालने की भी भले हम प्रयोग करें, ऐसे संतरा है दांत से निकालना मुश्किल है, तो हाथों से निकालने मौसम्बी इत्यादि कभी कभी बाएं हाथ का प्रयोग करना पड़ता है। लेकिन जहां तक हो सके हमें दाहिने हाथ का ही केवल प्रयोग करना चाहिए, बाएं हाथ का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के लिए ऐसे कोई सीमा नहीं। भगवान श्री कृष्ण बाएं हाथ में दाएं हाथ में लेकर बैठे हैं, खा रहे हैं, कभी ये खा रहे हैं तो कभी वो खा रहे हैं। बहुत बड़ा सुंदर दृश्य था। और कौन से फल खाते थे, बेल फल थे, और उस जमाने में जो भी वहां मिलता था वृंदावन में वो खाया करते थे। और उनके दोनों हाथ इन चीजों से गीले हुए थे और ऐसे बहुत सुंदर दिख रहे थे उनके हाथ इन सब पदार्थों से गीले होकर। तिष्ठन मध्य स्व परिसुहृदो, अपने सुहृदों के बीच में बैठकर बड़े आनंद से वो क्या कर रहे थे, हासयन नर्म भी स्वयं, वो अपने हंसी मजाक कर रहे थे, उपहास कर रहे थे, चुटकुले सुना रहे थे एक दूसरे को। तो क्या क्या चुटकुले सुना रहे थे, एक उदाहरण। एक बार वहां पर एक भौंरा आया, वो भी प्रसाद ग्रहण करना चाहता था सबके साथ, वो भी कृष्ण का संग लेना चाहता था। क्योंकि वृंदावन में सारे जो प्राणी हैं, भले केवल ग्वाल बाल नहीं, गोप गोपियां नहीं, गाय नहीं, लेकिन और जो भी प्राणियां हैं, चाहे वो वृक्ष हो, चाहे वो घास के तिनके हो, चाहे वो भवरे हो, पक्षी हो, पशु हो, सब भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं। और पिछले जन्मों में बड़े बड़े साधु तपस्वी वगैरह थे, और ये तपस्या के बल पर उनको अभी श्री कृष्ण और उनके नित्य पार्षदों का संग प्राप्त हुआ, कृष्ण की सेवा करने का, कृष्ण का दर्शन लेने का अवसर प्राप्त हुआ। तो इस तरह से ये भंवरा वहां आया जुज करते हुए, तो कृष्ण भगवान कहने लगे कि अरे भंवरे, तू यहां क्यों मेरे ब्राह्मण मित्र मधुमंगल को तंग करने आया है? क्या तुझे नहीं मालूम कि ब्रह्म हत्या करना बड़ा पाप है? तो ऐसे वो कह देते और सारे लोग हंसने लग जाते जोर जोर से कि भगवान श्री कृष्ण ने भंवरे को ऐसे कहा है। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल बाल मित्रों के संग में बैठकर ऐसे ही चुटकुले सुना दिया करते थे। तो बड़ा आनंद रम्य वातावरण था। कल्पना कीजिए अपने मन में कि ऐसे कृष्ण भगवान बैठ रहे हैं, एक दूसरे को चुटकुले सुना रहे हैं, एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे हैं, अच्छे ढंग से, हमारे भक्त जैसे करते वैसे नहीं, बहुत अच्छे ढंग से एक दूसरे का मजाक उड़ाते उड़ाते खेलते खेलते वो लीला कर रहे थे, बड़ा आनंद ले रहे थे। और उधर स्वर्ग लोके मिशति, स्वर्ग लोक से और ऊपर के लोक से सारे देवी देवता देख रहे हैं, शिव जी देख रहे हैं, ब्रह्मा जी देख रहे हैं, कुबेर जी देख रहे हैं, यमराज देख रहे हैं, सारे देवी देवता देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। और इतना आश्चर्य उनको क्यों हुआ? क्योंकि कृष्ण भगवान यज्ञ भूख है, यज्ञ भूख बाल के लिए। यज्ञ भूख मतलब क्या है? जो यज्ञ में भोग करते हैं, अर्थात जो यज्ञ किए जाते हैं, यज्ञों का फल जो है वो देवी देवताओं को दिया जाता है, फिर देवी देवता खास करके वहां आते हैं उस यज्ञ फल को स्वीकार करने के लिए। लेकिन ये यज्ञ वास्तव में किसके लिए है? विष्णु के लिए है। यज्ञ अर्थात अर्मणो अन्यत्र कर्म लोकोयम कर्म बंधनः। तो यज्ञपति या यज्ञ विष्णु या कृष्ण है। तो जब तक विष्णु आके उस यज्ञ स्थली में उपस्थित नहीं होते और वो प्रसाद को ग्रहण नहीं करते, तब तक यज्ञ असफल माना जाता था। तो यज्ञ का उद्देश्य ये होता था कि विष्णु को यज्ञ का फल प्रदान करें, इस तरह से विष्णु की उपासना करें। इसलिए विष्णु अपने चतुर्भुज रूप में आकर यज्ञ स्थल में प्रसाद या वो भोजन भोग ग्रहण करते थे, इस तरह से यज्ञ जो है वो सफल माना जाता था। तो देवी देवता हमेशा विष्णु के पीछे पीछे आते थे यज्ञ की सामग्री, यज्ञ को स्वीकार करने के लिए। तो इस समय सारे देवी देवतागण क्या देख रहे हैं कि वही भगवान श्री हरि, वही भगवान श्री विष्णु अभी एक साधारण ग्वाल बाल का रूप धारण करके आए हैं। वही भगवान जो कि यज्ञ भूख हैं, यज्ञों के फल को स्वीकार करते हैं केवल, वो आज एक साधारण ग्वाल बाल का रूप बनाकर दूसरे ग्वाल बालों के संग में जंगल में बैठे हैं नदी के तट पर और भोजन ग्रहण कर रहे हैं। तो ये बड़े आश्चर्य की बात है। तो इनको देखकर ये बड़ा आश्चर्य हुआ सारे ग्वाल बालों को। और इस तरह से जब सारे देवी देवतागण इस अद्भुत दृश्य को देख रहे थे, ग्वाल बालों को कुछ परवाह नहीं थी, देवी देवता देख रहे हैं, कौन नहीं देख रहे हैं, उनको पता भी नहीं था कि देवी देवता देख रहे हैं, कि वो देवी देवता तो अपने अपने धाम में अपने अपने लोक में रहकर देख रहे थे, या तो फिर कोई बादलों के पीछे छुप कर देख रहे थे, तो उनको पता नहीं चला। लेकिन वो अपने दुनिया में मस्त थे, कृष्ण के संग में थे। जब कोई कृष्ण के संग में होता है तो उसको दुनिया की क्या पड़ी है, क्या परवाह है उसे संसार का, बाहर क्या चल रहा है, किसी को कुछ नहीं परवाह थी। तो ग्वाल बाल सारे कृष्ण के संग में इतने मस्त थे आनंद में कि उन्होंने सारा संसार वो भूल गए, केवल प्रसाद और कृष्ण, अपने गायों को भी भूल गए वो। और इस तरह से गोपगण हमेशा हसमुख चेहरे से बैठकर वहां कृष्ण के साथ संग कर रहे थे। तो कवि कर्णपुर बताते हैं कि गोप इतने सुंदर लग रहे थे, उनके दांत चमक रहे थे, सुंदर सुंदर मोती जैसे दांत थे सभी के, और उनके चमक से ऐसे लग रहा था कि उनके होठ जो है स्नान कर रहे हैं, उस तेज से उस चमक, वो चमक जो है अपने उनके होठों को स्नान करा रही, अभिषेक करा रही है। सुंदर दृश्य, सारे ग्वाल बाल बड़े बड़े सुंदर सुंदर बालक बैठे हुए थे। और जब जिस वक्त सारे ग्वाल बाल कृष्ण के संग में ऐसे बैठे हुए थे, तो उधर क्या हो गया, सारे जो वत्स हैं वो धीरे 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 से वन में प्रवेश करने लगे। क्यों वन में जाने लगे? वत्सास्तु अंतर वने दूरम विविशु तृण लोभिता। तृण लोभिता मतलब तृण के लोभ में, घास खाने के इच्छुक थे सब। सारे हरी भरी खेती थी वहां पर, हरियाली थी, वृंदावन है आखिर में। और ये वत्स जो है गाय के बछड़े, ये हरे भरे घास को खाने के लिए लोभित हो गए और धीरे धीरे गए। कहां गए? अंतर वने दूरम, वन में अंदर गए, बहुत गहराई में अंदर चले गए वन में। और जब ऐसे देखा ग्वाल बाल मित्रों ने, कई समय के बाद, बहुत लंबे समय के बाद, तो उनको क्या हो गया, चिंता हो गई, भयभीत हो गए सारे, और क्या कहने लगे, तुरंत भयभीत होकर कृष्ण को पुकारने लगे। ये कृष्ण भक्तों की के लक्षण होते हैं। ब्रजवासी कितनी बार संकट में पड़ते थे, लेकिन हर बार जब संकट में पड़ते थे तो क्या याद करते थे, कृष्ण को याद करते थे, कृष्ण का नाम पुकारते थे। तो इस समय भी जब ग्वाल बालों ने देखा कि अभी सारे ग्वाल सारे वत्स जो है वो चले गए हैं, न जाने कहां हैं, तो उस समय उन्होंने कहा कृष्ण कृष्ण। अभी ग्वाल बाल तृण से लोभित होकर वन में चले गए हैं, अभी पता नहीं हमें वो कहां गए, कैसे गए, चलो चलो हम भी जाकर वहां उनको ढूंढने जाते हैं। तो इसलिए भयभीत हो गए थे। तो तान दृष्ट्वा, तो शुकदेव गोस्वामी बताते हैं, तान दृष्ट्वा भय संत्रस्तान ऊचे कृष्णोस्य भी भयम् मित्र्याणाशान मा विरमते हानिष्ये वत्सकानहम्। तान दृष्ट्वा, तो जब ग्वाल बालों ने ऐसे देखा और कृष्ण ने देखा तो क्या हो गया, सारे ग्वाल बाल भयभीत हो गए। तो उन ग्वाल बालों को जो कि भयभीत हो गए थे, भय संत्रस्तान, कृष्ण भगवान ने उनके ऊपर कृपा की। ये लोग भयभीत क्यों हुए थे ग्वाल बाल, क्योंकि वत्स चले गए थे जंगल के अंदर। अब जंगल में न जाने कौन से भयानक जानवर हो सकते हैं, वो वत्सों के ऊपर आक्रमण कर सकते हैं, उनको खा सकते हैं। तो ये ग्वाल बाल ये तो प्रेम करते थे वत्सों से बहुत, और अगर वत्सों को कोई नुकसान हो गया, कोई हानि पहुंच गई तो उनको बहुत दुख पड़ जाता, तो बड़े भयभीत हो गए। और उनके भयभीत होने का दूसरा कारण भी था, और वो था कि ये गाय और बैल ब्रजवासियों के लिए जीवन यापन की एकमात्र सामग्री थी। इनका जीवन गायों के ऊपर निर्भर था, इनका धन यही था, गोरक्षा और कृषि। तो इस तरह से अगर गायों को या ग्वालों को कुछ वत्सों को कुछ हो जाता था तो उनके माता पिता उनको बहुत डांटते, तो बच्चों को डर था कि अगर कुछ भी हो गया, एक भी वत्स को कुछ हो गया तो घर जाके बहुत डांट सुननी पड़ेगी, डांट खानी पड़ेगी। तो इसलिए दोनों भयभीत हो गए। यह शब्द का प्रयोग किया गया है भी भयम, ये कृष्ण का नाम है। भी भयम मतलब कि जो जो भी भयभीत, जो भयानक वस्तु है जिससे कि लोग डरते हैं, उस भयानक वस्तु के भीतर जो डरने के लिए जो गुण, डर पैदा करने के लिए जो गुण होता है वो कृष्ण है। जैसे भूत, सभी लोग भूत से डरते हैं, जब कोई भूत आता है भूत के अंदर वो क्या गुण है जिससे सभी लोग डरते हैं, या अंधकार, अंधकार से लोग डरते हैं, तो अंधकार में वो क्या गुण है जिससे सभी लोग डरते हैं। तो जो भी संसार में भय पैदा करने वाले वस्तु हैं, उनके भय पैदा करने की जो योग्यता है, जो गुण उसमें है, वो कृष्ण है, क्योंकि कृष्ण से ही ये गुण आते हैं। कृष्ण ही उनको शक्ति देते हैं भय देने के लिए दूसरों को। कृष्ण की शक्ति दिए बिना कोई भी वस्तु भयानक नहीं हो सकती है। दूसरे शब्दों में ये भी कहा जा सकता है कि भी भयम मतलब कि मूर्तिमान भय को वश में करने वाले। सारे संसार में लोग मूर्तिमान भय से भयभीत होते हैं, लेकिन कृष्ण वो व्यक्ति हैं जिनसे मूर्तिमान भय भी भयभीत हो जाता है। अर्थात जहां श्री कृष्ण है वहां कोई भय नहीं है। इसलिए जो व्यक्ति भयभीत होकर कृष्ण के नाम का उच्चारण करता है तो उसे भय नहीं, वो भय से परे हो जाता है। जैसे ग्वाल बाल थे, जब भी भयभीत हो जाते थे कृष्ण का नाम लेते थे और भय से मुक्त हो जाते थे। भय क्यों आता है ये संसार में, भयम द्वितीयाभिनिवेशत स्याद ईशाद अपेतस्य विपर्ययो अस्मृति ही। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में बताया जाता है कि भय तब जागृत होता है हृदय में जब हम भगवान श्री कृष्ण से विमुख हो जाते हैं, जब हमारे हृदय में विस्मृति हो जाती है भगवान के प्रति, भगवान को भूल जाते हैं, उस समय हमारे हृदय में भय जागृत हो जाता है। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण का स्मरण रहता है उस समय कोई भय नहीं रहता। इसलिए जब भी हम किसी भी भयानक या चिंतित अवस्था में हो तो हमें केवल कृष्ण का नाम लेना चाहिए। हमें याद है कि एक भक्त हमें बंबई में बता रहे थे, शायद आपको ये पहले सुनाया होगा हमने, छोटी सी बात है लेकिन सीखने की बात है। वो एक बार बंबई के लोकल रेलगाड़ी में सफर कर रहे थे। आप में से जो बंबई गए हैं आप जानते हैं कि बंबई में रेलगाड़ियों की अवस्था क्या होती है, इतनी भीड़ होती है, और खास करके जब ज्यादा भीड़ का समय होता है, जब लोग दफ्तर से जाते हैं या आते हैं, तो इतनी भीड़ होती है कि बाहर वाले लोग अंदर प्रवेश नहीं कर सकते और जो अंदर वाले लोग हैं वो बाहर नहीं आ सकते, जो अंदर वो अंदर, जो बाहर सो बाहर, ऐसी अवस्था हो जाती है। तो ये एक भक्त रेलगाड़ी के अंदर थे, बहुत भीड़ थी और बाहर निकलना था उस भक्त को, तो निकलने के लिए कोई जगह नहीं। खैर किसी न किसी तरह से धक्का मार कर इधर उधर से बड़ा परिश्रम कर करके किसी न किसी तरह दरवाजे तक पहुंच गए और जब स्टेशन आया तो उतर गए। लेकिन उस समय ट्रेन चालू हो गई और जब ट्रेन चालू हो गई तो उनके कंधे पे एक बैग लटका हुआ था, थैली लटकी हुई थी और वो अटक गई लोगों के बीच में। तो वो नीचे प्लेटफॉर्म पर कंधे पे जो बैग लटका वो, लेकिन बैग अंदर ट्रेन में उन लोगों के बीच में। तो अचानक भयभीत हो गए ये भक्त और जोर से चिल्लाया कृष्णा, और जैसे कृष्णा कहा तो तुरंत बैग निकल आया, तुरंत उसी क्षण में। तो उस तरह हम भी जब अटक जाते हैं, फंस जाते हैं कहीं, आईगा चिल्लाने के बजाय या मम्मी या हाय हाय करने के बजाय, ये सब करने के बजाय हमें क्या करना चाहिए, कृष्णा। तो हर भयभीत अवस्था में कृष्ण का नाम लेने से हम भय से मुक्त हो जा सकते हैं। ये ब्रजवासियों से हम सीख सकते हैं। हर बार कितने दुख आए उनके लिए, कितने संकट आए, लेकिन हर बार उन्होंने यही सोचा। भक्त में और अभक्त में ये अंतर होता है कि भक्त जब संकट में आते हैं भगवान का ही स्मरण करते हैं, अभक्त जब संकट में आते हैं तो दारू पीने जाते हैं या कुछ इधर उधर और कहीं चले जाते हैं या फिर कोई आक्रमण करते हैं, कुछ न कुछ गड़बड़ कर बैठते हैं। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने जब इस तरह से ग्वाल बालों की बात सुनी तो सुनते सुनते उनका चेहरा खिल उठा, बड़ा मनोरम मोहक लग रहा था उनका चेहरा, मानो के एक दीप्तिमान पूर्ण चांद से भी ज्यादा सुंदर। और भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही अपने हसमुख चेहरे से वो कहने लगे, ऊंचे कृष्ण, ऊंच मतलब बोलना, जैसे सुखदेव उवाच, उवाच या ऊंच हो एक ही बात। तो कृष्ण बोले, क्या बोलने लगे, मित्राणी, हे मेरे मित्र, हे प्रिय ग्वाल बाल, आशान, तुम्हारे खाने पीने में मां विरमत, रोको मत, आनंद लेते रहो, तुम्हारा भोग करते रहो, भोजन लेते रहो। इह अनेश्य वत्सकान अहम, इह अनेश्य मतलब मैं खुद लाऊंगा, इह इस स्थान में, मी आन्नर अनेश्य, इह अनेश्य मैं किनको लाऊंगा, वत्सकान, वत्सों को, जो गाय के बछड़े अभी इधर उधर जंगल में चले गए हैं उनको मैं लाऊंगा, अहम मैं खुद जाकर लाऊंगा। देखिए ये कृष्ण की कृपा है, कृष्ण को भक्त वत्सल कहते हैं, भक्त उनके लिए बहुत प्रिय होते हैं। इसलिए भक्त जब संकट में आते हैं तो उनको सहन नहीं होता और फिर खुद आकर अपने भक्तों की सहायता करते हैं। ऐसा नहीं कि किसी भी दूत को भेजते हैं या अपनी शक्ति के द्वारा करते हैं, नहीं, खुद कर लेते हैं, अपने एजेंट या और किसी को नहीं भेजते। तो जब कृष्ण भगवान ने ऐसे कहा अहम, तो उस समय सारे ग्वाल बालों ने कहा ठीक है, अभी कृष्ण जा रहे हैं तो हम हमारे काम में बने रहेंगे इधर। तो कृष्ण भगवान जब ऐसे सोचते हैं तो हमें जानना चाहिए कि ये बड़ी उनकी कृपा होती है अपने भक्तों के ऊपर। उनको क्या आवश्यकता है ये सब करने के लिए, वो अपने जगह में संतुष्ट है। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं खुद जाऊंगा। भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, अनन्यास चिंतयंतो माम ये जना परुपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। वो क्या कहते हैं कि जो मेरे भक्त होते हैं, जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन मनन करते रहते हैं, नित्य मेरी उपासना मेरी सेवा करते रहते हैं, उनके लिए जो कमी है मैं क्या करूंगा, पूरी करूंगा। और जो उनके पास है उसकी क्या करूंगा, रक्षा करूंगा। तो ग्वाल बालों के पास क्या था, गाय थी, गाय के अलावा क्या था उनके पास। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा गायों की रक्षा करना भी मेरा काम है, इसलिए तो मेरा नाम गोपाल है, गोविंद है, और इसलिए उन्होंने खुद जाकर ये रक्षा की अपने मित्रों की। तो देखिए कितनी सुंदर बात है। तो इसलिए ये प्रेम का लक्षण होता है कि जब कोई प्रेम की बात होती है तो भगवान स्वयं चले आते हैं। तो आगे चलकर सुखदेव गोस्वामी क्या कहते हैं, इत्युक्त्वा द्रेदारिकुञ्ज गहरेष्वात्मवत्सकान् विचिन्वन् भगवान् कृष्णः सपाणि कवलो ययौ। कृष्ण भगवान ने ऐसा कहा, इति उक्त्वा, ऐसे कहे कृष्ण भगवान कि हे ग्वाल बाल मित्र, तुम चिंता नहीं करो, मैं देख कर आता हूँ, तुम लोग खाते रहो यहाँ पर। और कहाँ कहाँ गए कृष्ण भगवान, अद्री, केवल नदी के तट पर नहीं, अद्री मतलब पहाड़ों में गए, वृंदावन के पहाड़ जो थे वहां पर चले गए ढूंढने के लिए। दरी, दरी मतलब पहाड़ के अंदर जो गुफे होते हैं वहां पर अंदर भी देखने गए, कहीं यहाँ तो वत्स चले नहीं गए। गहरेश्व, गहवर मतलब जो छोटी छोटी गलियां होती हैं वगैरह, बरसाना में आपको मालूम है, बरसाना में जो आप गए हैं वहां गहवर वन है, बहुत सुंदर स्थली है वहां पर। और फिर अलग अलग जगह इधर उधर कुंजों में वत्स को ढूंढने के लिए भगवान गए। अभी श्वेतोष्टक उपनिषद में बताया गया है, न तस्य कार्यम कारणम च विद्यते, भगवान के लिए कुछ करने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी अभी वो इतना कष्ट ले रहे हैं केवल अपने ग्वाल बाल मित्रों की सेवा के लिए। कहां कहां जंगलों में, पहाड़ों में, कुंजों में, गुफों में जा रहे हैं केवल अपने भक्तों की सेवा करने के लिए। देखिए ये है भगवान की ममता, भगवान का प्रेम। भगवान ने निजी ख्याल लिया अपने भक्तों का। और यहां कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, सपाणि कवलो। और जब कृष्ण भगवान गए वत्सों को ढूंढने के लिए, ऐसा नहीं कि उन्होंने सब प्रसाद नीचे रख दिया, अपने हाथ धो लिए और उठकर चले गए। कैसे गए, अपने दोनों हाथों में प्रसाद लिए चल पड़े, इधर उधर जा रहे हैं, कहां गए मेरे वत्स, कहां गए हमारे वत्स, किधर गए, अरे इधर कैसे गुम हो गए, मानो कि उन्हें कुछ मालूम ही नहीं। इतना सुंदर दृश्य, और ये सब देवी देवतागण देख रहे हैं कि हाथ में दही चावल फल लिए, दाहिने हाथ में अचार लिए जा रहे हैं कृष्ण ग्वाल बाल गायों को ढूंढने के लिए। ये सुंदर दृश्य, सपाणि कवलो ययहु, ययहु मतलब गए। और जिस समय कृष्ण भगवान ऐसे जा रहे थे तो चलते चलते बहुत आकर्षक लग रहे थे, उनकी बांसुरी, उनका श्रृंग, उनका वेत्र जैसे उनके धोती में अटका हुआ था, और उनके शरीर से एक ऐसा तेज आ रहा था जिससे कि सारा वन जो है वो प्रकाशमान हो रहा था। और वहां पर हरियाली थी, लेकिन हरियाली में भगवान श्री कृष्ण ने कहीं भी कोई पद चिन्ह नहीं देखे ग्वालों के। तो भगवान सोचने लगे कि कहां गए, नहीं ग्वालों का कोई, गवों का कोई चिन्ह था, सब जगह सारे दिशाओं में भगवान श्री कृष्ण ने खोज दिया, लेकिन कहीं भी ग्वाल जो गए हैं मिले नहीं। अब हुआ क्या था, भगवान श्री कृष्ण को क्यों नहीं मिले गौए, क्योंकि जिस समय कृष्ण भगवान ग्वाल बालों के साथ में लेकर प्रसाद ग्रहण कर रहे थे, ब्रह्मा जी ने सारे वत्सों को, गाय के बछड़ों को चुरा दिया। क्यों चुरा दिया ब्रह्मा जी ने, क्योंकि उनके अंदर अहंकार हो गया था, क्योंकि वो सृष्टिकर्ता है और सृष्टिकर्ता होने के नाते वो सोच रहे थे कि ये जो बालक है उसने इस बड़े बड़े असुर, भयंकर असुर अघासुर का वध किया है, और ये लोग बोल रहे हैं कि कृष्ण परम भगवान है, तो देखते हैं, परीक्षा करके देख लेते हैं ये कृष्ण है कि नहीं। और कैसे परीक्षा करने लगे और क्या सोचने लगे ब्रह्मा जी, इस तरह से आए, आगे चल के सुखदेव गोस्वामी बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। तो आइए पढ़ते हैं, और ये श्लोक यहाँ पर लिखा हुआ है। अम्भो जन्म जनिस्तदंतरगतो मायार्भकस्येषितुर् द्रष्टुं मञ्जुमहित्वमन्यदपि तद्वत्सानितो वत्सपान् नित्वान्यत्र कुरुद्वहान्तरदधात्खेव स्थितो यः पुरा। दृष्ट्वा घासुरमोक्षणं प्रभवतः प्राप्तः परं विस्मयम्। आ सकते हैं अम्भोरुह, अम्भो मतलब कमल, अम्भो ज ज मतलब जन्म लेने वाला, तो अम्भो ज जन ही कौन है, जो व्यक्ति कमल के ऊपर जन्म लेता है वो कौन है, ब्रह्मा जी। तो ये ब्रह्मा जी को संबोधित करता है, अम्भो जी, अम्भो जन, अम्भो जन्म जनिस। तो ब्रह्मा जी का जन्म ऐसे कमल पुष्प के ऊपर हुआ है, गर्भोदक्षाय विष्णु के नाभि से निकलते हुए कमल, ये संसार, ये पृथ्वी लोक का साधारण कमल भी नहीं, और वो कमल कहां से निकल रहा था, गर्भोदक्षाय विष्णु के नाभि से। लेकिन ये कमल भी भौतिक है, क्योंकि ये सारे सृष्टि का स्वरूप है, तो चाहे किसी व्यक्ति का माता पिता के द्वारा जन्म हुआ हो, किसी का जन्म एक मनुष्य योनि में हुआ हो, पशु योनि में हुआ हो, या किसी का जन्म एक कमल पुष्प के ऊपर हुआ हो, लेकिन ये सब भौतिक जन्म है, क्योंकि कमल पुष्प भी भौतिक है। अब वाकई ब्रह्मा जी का जन्म जो है बड़ा अद्भुत है, यहां हम नहीं देखते कि कोई व्यक्ति कमल के ऊपर जन्म लेता है, देखते हैं कभी नहीं, हमारे अनुभव तो कोई नहीं हो सकता ऐसे, इतिहास में भी नहीं, केवल ब्रह्मा जी जो कमल पुष्प के ऊपर जन्म लेते हैं, तो बड़ा अद्भुत दृश्य है। लेकिन फिर भी भौतिक, ये कमल जो है भौतिक है, इसलिए जो भी, जिसका भी जन्म ऐसे भौतिक तरीके से होता है, वो चार त्रुटियों से या चार दोषों से वो मुक्त नहीं हो सकता, जब तक कि वो भगवान के शरण में नहीं जाता। चार वो दोष कौन से हैं, भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्स, कर्णापाटव। कौन से है ये, भ्रम मतलब नहीं, भ्रम मतलब गलती करना, और भ्रम मतलब मोहित होने की जो प्रवृत्ति होती है, विप्रलिप्स मतलब धोखा देने की प्रवृत्ति, कर्णापाटव मतलब अपूर्ण इंद्रियां। तो ये चार चीजों जो है ये सभी को होती हैं जिनका भौतिक जन्म होता है। तो इसलिए ब्रह्मा जी का जन्म भी भौतिक था, क्योंकि कमल पुष्प से आया था, इसलिए वो भी ये चार दोषों से के प्रभाव में पड़ गए। अभी देखिए ब्रह्मा जी सृष्टि करता है, इतना ऊंचा पद है उनका, इतना सौंदर्य है, इतना ज्ञान है, इतना योग बल है, और उनका शरीर जो है वो बुद्धि का बना हुआ है। ये पता है आपको, हमारा शरीर किस चीज का बना हुआ है, पंच महाभूतों का, खास करके ज्यादा मात्रा किसकी होती है, नहीं वो है, लेकिन पंच महाभूतों में से भूमि और अपह अर्थात पृथ्वी और जल ज्यादा होता है ना हमारे शरीरों में, लेकिन देवताओं के शरीर में ये भूमि और जल कम होता है, और जो सूक्ष्म महाभूत होते हैं उनकी मात्रा ज्यादा होती है। जैसे देवी देवतागण होते हैं तो उनके शरीर में अग्नि है, जैसे सूर्य देव का शरीर तो अग्नि का है ना, क्योंकि वो अग्नि में निवास करते हैं, तो अग्नि का नहीं होगा तो फिर कैसे चलेगा। अगर पृथ्वी और जल का शरीर उनका हो, सूरज के भीतर रह सकते हैं? वो नहीं रह सकते। तो ये जो भूमि आप अनल वायु हो, जो अग्नि है, वायु है, खम है, आकाश, मन, बुद्धि, तो इन देवताओं का जो है इन सूक्ष्म पदार्थों से बना हुआ होता है। ज्यादा मात्रा में ये रहती हैं, पृथ्वी भी रहती है, आकाश भी है, लेकिन ज्यादा मात्रा में ये सूक्ष्म वस्तुएं। और ब्रह्मा जी का शरीर तो प्राय पूर्ण बुद्धि का है, शुद्ध बुद्धि का बनाया हुआ। सोचिए, कोई साधारण शहर नहीं है, ऐसा साधारण शरीर नहीं है ये। कभी कल्पना कर सकते हैं इतना सुंदर शरीर, इतना सूक्ष्म? तो ऐसे अद्भुत व्यक्ति हैं ब्रह्मा जी। लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी, क्योंकि उनका जन्म भौतिक है, किसी भी समय वो इन चार दोषों के प्रभाव में पड़ सकते हैं। कभी कभी हमारे भक्त सोचते हैं कि हमें क्यों सोचना चाहिए कि हम माया में पड़ सकते हैं, जब तक हम कृष्ण के पास में हैं। जब ब्रह्मा जी इतने बड़े व्यक्ति, संसार के प्रमुख, सबसे बड़े प्रमुख व्यक्ति, सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति ब्रह्मांड के, वो जब पढ़ सकते हैं, तो हम ब्रह्मा जी के सामने क्या है? हमारा शरीर तो बुद्धि का नहीं बना हुआ है। बुद्धि का बना हुआ है? बुद्धि तो है केवल यहाँ पर, वो भी थोड़ी बहुत हमारे अंदर होती है, वो भी भ्रमित हो जाती है। जब ब्रह्मा जी माया के प्रभाव में पढ़ सकते हैं, तो हमारे लिए माया में पढ़ना ये कौन सी बड़ी बात हो गई। तो इसलिए ब्रह्मा जी यहां शुकदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, तद अंतर्गतो, कि माया, भगवान के माया जाल में फंस गए। अब कैसे फंस गए माया के जाल में, ये आगे चल के वर्णन करते हैं। ब्रह्मा जी खे अवस्थित, यह खे मतलब खम, आकाश अर्थात बहुत दूर आकाश में, उनके ब्रह्मलोक में जब वो स्थित थे, अवस्थित, उन्होंने उस समय देखा, दृष्ट्वा, क्या देखा? अघासुर मोक्षणम प्रभवतः, कि अघासुर का मोक्ष हुआ, अघासुर की मृत्यु हुई भगवान श्री कृष्ण प्रभवतः के हाथों, और उनकी मुक्ति हो गई। तो ये ब्रह्मा जी ने देख लिया था, और जब देखा तो क्या हुआ उनको? प्राप्त परम विस्मयम, बड़े विस्मित हो गए कि ये ग्वाल बाल ने इतने बड़े असुर का वध किया, बड़े विस्मित हो गए। और उनका विस्मय, उनका आश्चर्य दुगना हो गया, 10 गुना हो गया, जब उसके बाद में उन्होंने इसी ग्वाल बाल को दूसरे ग्वाल बालों के संग में बैठकर एक साधारण मनुष्य की तरह, बालक की तरह भोजन ग्रहण करते हुए देखा, तो उनका विस्मय और भी बढ़ गया। वैसे तो आश्चर्यचकित हो ही गए थे, लेकिन जब कृष्ण को ऐसे करते हुए देखा और साधारण अन्न खाते हुए देखा, तो वो और भी विस्मित हो गए और सोचने लगे कि ऐसे बालक कैसे ये सब कर सकता है। इसलिए उन्होंने सोचा कि ये तो गोप नहीं, ये तो साधारण गोप है, ये भगवान कैसे हो सकता है? अगर ये भगवान है तो इस तरह का भोजन क्यों खाएंगे? साधारण भोजन, दही, चावल, फल, देवी देवता जो खाते हैं, बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म स्वादिष्ट से स्वादिष्ट व्यंजन खाते हैं वो। हमारे तरह का वो स्थूल चावल ऐसा सब नहीं खाते वो, उनके लिए तो बहुत सुंदर सुंदर पदार्थ है। वहां खाने की इच्छा मत कीजिए, खाने की इच्छा तो वहां जाना पड़ेगा, और वहां जाना पड़ेगा तो भगवान के धाम में नहीं जा पाएंगे। हमें दही चावल रोटी से ही संतुष्ट रहना चाहिए, भगवान कृष्ण के प्रसाद से। तो ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं, ये गर्ग संहिता में गर्ग मुन बताते हैं, हरि ही यदि स्यात् बहु कुत्सित अन्य कथम मृतः वा व्रज गोप बालैः। अगर ये हरि हैं, हरि यदि स्यात् तो बहु कुत्सित अन्य कथम मृतः, अगर वास्तव में ये भगवान है तो ऐसा बहु कुत्सित अन्न क्यों खा रहे हैं? कुत्सित मतलब बहुत ही नीच प्रकार का अन्न। जैसे कोई बहुत अमीर आदमी होता है तो वो भले बासमती चावल छोड़कर कुछ नहीं खाएगा ना, चावल खाएगा तो बासमती खाएगा, तो बहुत बड़ा होगा। अभी साधारण जो बहुत गरीब होते हैं वो बासमती हर रोज तो नहीं खा सकते। तो अगर कोई बहुत अमीर आदमी के घर में कोई जाके देखे कि ये तो एकदम पुराना चावल और वो भी क्या है बिल्कुल निकृष्ट गुण का जो चावल है खा रहे हैं, तो लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तो ये तो है परम भगवान, और साधारण जो है दाल चावल वो दही सब खा रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि ब्रह्मा जी विस्मित हो गए। अब जब सुदामा कृष्ण के पास गए थे तो क्या ले गए थे साथ में? पोहा। और जब कृष्ण को दिया, अर्पण किया वो पोहा, तो कैसा था वो पोहा? प्राय सड़ गया था ना, कितने दिन सफर किया था सुदामा ने, चलते 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 कई दिनों बाद बेचारे सुदामा जी द्वारका पहुंच गए थे। और उसके बाद जब भगवान श्री कृष्ण जानबूझकर छीन लिया वो पोहा, तो उस समय क्या किया रुक्मिणी देवी ने? रुक्मिणी देवी सोचने की, अरे रे रे पोहा, ये है द्वारकाधीश, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक, सारे देवी देवता आके सर झुकाते हैं, अपना किरीट सर पे लगाते हैं इस कृष्ण के सामने, हमारे पति के सामने, वैकुंठ पति है ये, इतना ऐश्वर्य यहाँ है और ये ऐसा पोहा खा रहे हैं, सहन नहीं हुआ। तो खैर एक कण खा लिया भगवान श्री कृष्ण, आहा कितना अच्छा है, बहुत अच्छा है। और दूसरा कण खाने जा रहे थे कि उस समय रुक्मिणी देवी ने हाथ पकड़ लिया, रोक दिया, नहीं नहीं नहीं,